धवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 5 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोए सवसाहुः मुनिसुवय जिनवसहं सुवय मुनिवसः सन्तु अम्णमिहुं कम्माणुयोयमिणमो वोक्षमणे यत्थगन्थगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, और इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणाखंड। वर्गणाखंड के अभी हम कर्म अनुयोग द्वार देख रहे थे, कम्माण योग द्वार, और 13वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 पर हम आ गए, 46। यहाँ कर्म शब्द से क्रिया समझना, और हमने उसके जो निक्षेप में यानी उसके क्रिया कर्म के अलग अलग जो अर्थों में कर्म शब्द आता है जिसको हम कहेंगे, उसके जो निक्षेप हमने देखे थे 38 पेज पर, कर्म निक्षेप कहा था और उसमें 10 प्रकार के निक्षेप बताए थे। उसमें से अभी तक हमने क्या क्या देखा है तो नाम कर्म पेज नंबर 38 में से नीचे जो है ना 4 नंबर का सूत्र, उसमें से अभी हमने नाम कर्म देखा, स्थापना कर्म देखा, द्रव्य कर्म देखा। द्रव्य कर्म का अर्थ क्या देखा था, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जो है वो द्रव्य की अपनी अपनी क्रिया। फिर प्रयोग कर्म, उसमें योग को लिया था, मन वचन काय के योग को वहाँ प्रयोग कर्म कहा था। समवदान कर्म का अर्थ हमने ये देखा था कि 8 कर्मों का या 7 या 6 कर्मों का बंद होते समय वो विभाजन होता है, उसी को समवदान कर्म कहा था। अधक कर्म अभी हम देखने जा रहे हैं, ये 6 नंबर का है ना, 6 नंबर का निक्षेप यहाँ हम देखेंगे, निक्षेप नंबर 6। हाँ, अब क्या कहते हैं, जम तम अधाकम्मम नाम। अब अधक कर्म का अधिकार है, उसके अर्थ का खुलासा करते हैं, यानी अधक कर्म किसको कहना उसकी बात यहाँ हम देख रहे हैं। तम ओद्दावण विद्दावण परिदावण आरंभ कदनिफन्नम तम सवम आधाकम्मम नाम। वह उपद्रावण विद्रावण परितापन और आरंभ रूप कार्य से निष्पन्न होता है, वह सब अधः कर्म है, यानी जिसको हम कहेंगे पाप, पाप होते हैं आरंभ वगैरह में क्या होता है सब, तो पाप के उत्पन्न करने वाले कुछ होगे शायद, अभी हम पढ़ेंगे इसको। कृत शब्द कार्य सामान्य का वाची है, क्योंकि यहाँ भाव गर्भ कर्मवाची कृत शब्द का ग्रहण किया है, अथवा कृत शब्द निमित्त रूप अर्थ में विद्यमान है। एक क्रिया है ना, तो क्रिया करना उस कार्य सामान्य को बताने वाला है, कार्य सामान्य इन जनरल सामान्य से, अथवा कृत शब्द निमित्त रूप अर्थ में विद्यमान है। जीव का उपद्रव करना उद्दावण कहलाता है, उपद्रावण कहा ना ऊपर, अंग छेदन आदि व्यापार करना विद्दावण कहलाता है। अंग छेदन समझते हैं, हाथ काटना या जो कोई हम जानवरों के जो पूछ काटते हैं या उनके जो बाल काटने को अंग छेदन, हाँ कानों को शेप देने के लिए उसको ऐसा झिकझैक करते हैं, वो सब उनका अंग छेदन है। उपद्रावण करना है नहीं, तकलीफ देना, उपद्रव करना। हम कहते ये प्राणी उपद्रवी प्राणी है, यानी कुछ नाजूस करते हैं, तकलीफ देते हैं। ये चूहे वगैरह को क्या कहते हैं, वो प्राणियों में उपद्रवी प्राणी। तो उपद्रव करना है, तकलीफ देना। देखो, जीव का उपद्रव करना उद्दावन है, उसी को उपद्रावण कहा। उद्रावण ने अंग छेदन आदि व्यापार करना, संताप उत्पन्न करना परिदावन कहलाता है। यानी ये सब ऐसी क्रिया है कि यानी कषाय से होने वाली है ना, यानी वो पाप उपजाने वाली क्रिया है। और प्राणियों के प्राणों का वियोग करना आरंभ कहलाता है। आरंभ त्याग जो कहते हैं ना, उसमें क्या है, प्राणियों की हिंसा होती है। उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरंभ आदि कार्य रूप से जो उत्पन्न हुआ औदारिक शरीर है, यह सब अधः कर्म है। जिस शरीर में स्थित जीवों के उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरंभ अन्य के निमित्त से होते हैं, वह शरीर अधः कर्म है। अच्छा, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। नहीं, वो शरीर को उपद्रव किया, जीव उसमें रह रहा है, अंग छेदन किया, जीव को संताप उत्पन्न किया, परंतु ये किसका हुआ, औदारिक शरीर में स्थित जीवों के किया, इसलिए औदारिक शरीर को ही शरीर अधक कर्म कहलाया। अन्य के निमित्त से हो रहे और वो शरीर को अधक कर्म कहा, ये अलग अलग अपेक्षाओं से कथन है। हाँ, क्योंकि क्रिया जिसमें होती है उसको भी ले लेना, छह कारक लेना है। वो आचार्य स्वयं बता रहे ना, किस अपेक्षा से कहा, किसको क्या कहना। केवल क्रिया को नहीं, क्रिया करने वाले को भी कहते, क्रिया को भी कहते हैं, जिसमें जिसके निमित्त से होती है या जो करता है वो सब है। अब यहाँ लिखा ना, ये जो हमने लास्ट लाइन फिर पढ़ते, जिस शरीर में स्थित जीवों के, उस शरीर के स्थित जीवों को ये उपद्रावण किया, उसका विद्रावण किया, उसको परितापन संताप उत्पन्न किया, उसके जो उसकी हिंसा हुई, तो अन्य के निमित्त से हो रहे। उस जीव को, किस जीव को, औदारिक शरीर वाले जीव को अन्य के निमित्त से ये होती है पीड़ा वगैरह, उस शरीर को अधक कर्म कहा। जिस शरीर में जीव रह रहा है और उस शरीर को ये बातें हुई है, यानी जीव को संताप उत्पन्न हुआ, परंतु वो शरीर को यहाँ अधक कर्म कहा। शंकाकार पूछते हैं, इस तरह से स्वीकार करने पर भोग भूमि के मनुष्य और तिरियंचों का शरीर अधक कर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ उपद्रावण आदि कार्य नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो भोग भूमि में तो ऐसे जो एक दूसरे को मारना काटना या दूसरे कदली घात वगैरह ऐसी बातें नहीं होती है। समाधान, नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर रूप जाति की अपेक्षा यह बाधा सहित शरीर किसका, कर्म भूमि का, और भोग भूमि जो उनका शरीर, भोग भूमि में जन्मे हुए उनका शरीर एक है, अतः उसमें अधः कर्म पने की सिद्धि हो जाती। यानी औदारिक शरीर को अधः कर्म कहते, बस इतना ही है, इतना ही उसका अर्थ है।
यहाँ पे जो लिखा है ना, विद्रावण, परितापन और आरोहण आदि कार्य रूप से जो उत्पन्न हुआ औदारिक शरीर है, वह यह सब अर्थ कर्म है। तो जो शरीर के आधार से जो शरीर को ये उपद्रावण हुआ, वही जीव को वहाँ पे सत्ता उत्पन्न हुआ।
जो जीव औदारिक शरीर में रह रहा है,
हाँ, वो शरीर को, जब
वो उस शरीर में रहने वाले जीव को अन्य के निमित्त से ये उपद्रावण, विद्रावण वगैरह होते हैं, उस शरीर को अधः कर्म कह दिया, ये उसकी परिभाषा है। अब इसलिए शंकाकार फिर पूछते हैं, नारकियों के शरीर में भी उपद्रवण आदि कार्य देखे जाते हैं, क्योंकि वहां भी एक दूसरे को कितना तकलीफ देते है न, इसलिए उसे अधः कर्म क्यों नहीं कहते। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां पर उपद्रावण, विद्रावण और परिताप से आरंभ नहीं पाया जाता। आरंभ ने प्राणी प्राण वियोग, प्राणी यानी जीव और उसके जो द्रव्य प्राण, उसका वियोग होना यानी मरना, यानी कोई एक जीव दूसरे जीव को वो मारने काटने जलाने की क्रिया होती है, पर वो मरता नहीं है, इसलिए आरंभ नहीं होता है। जिस शरीर में स्थित किन्हीं जीवों के किसी भी काल में उपद्रावण विद्रावण और परितापन से मरना संभव है, वह शरीर अधकर्म है। समझ में आई बात? जिस शरीर में स्थित जीव के इन के निमित्त से मरना होता है, उस शरीर को अधकर्म कह दिया। परंतु यह विशेषण कौन सा, शरीर को अधकर्म जो कहना, ये शरीर का जो अधकर्म ये विशेषण है, नारकियों के शरीर में नहीं पाया जाता, क्योंकि इनसे उनकी अपमृत्यु नहीं होती। अपमृत्यु किसको कहेंगे? कदली घात से मरण होना, उसको अपमृत्यु कहते हैं। इसलिए उनका मरण नहीं होता। अथवा चूंकि उपद्रावण आदि चारों का समुदाय रूप एक विशेषण है, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं आता। यानी वो सभी लेना, उपद्रावण विद्रावण परितापन आरंभ, ये चारों के समूह को यहाँ अधकर्म कह दिया। ये तो हो गया 6 नंबर का निक्षेप। अब निक्षेप नंबर 7 हम देखेंगे। निक्षेप 7वां ऊपर पढ़ते, जम तम ईरिया वह कम्मम नाम। अब ईरिया पथ कर्म का अधिकार है। जम तम ईरिया वह कम्मम, वह तम ईरिया ने तम ईरिया, उसका अर्थ कहते। ईरिया का अर्थ योग है। वह जिस कार्मण शरीर का पथ मार्ग हेतु है, वह ईरिया पथ कर्म कहलाता है। योग मात्र के कारण जो कर्म बनता है, मात्र कहा 10वें गुणस्थान तक योग और कषाय दोनों है, योग मात्र ने अकेला योग से ही जो कर्म बनता है, तो योग मात्र के कारण जो कर्म बनता है, जिस कार्मण शरीर का पथ मार्ग हेतु है, वह ईरिया पथ कर्म कहलाता है। योग मात्र के कारण जो कर्म बनता है, वह ईरिया पथ कर्म है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। देखो फिर से पढ़ते, ईरिया का अर्थ क्या है? योग है। वह यानी योग, वह का अर्थ क्या किया? वह यानी योग जिस कार्मण शरीर का हेतु है, यानी कौन से कार्मण शरीर का हेतु है? जो केवली भगवान के कहो या 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो सातावेदनीय कर्म का बंध होता है, भले वो एक समय वो स्थिति अनुभाग नहीं है उसके अंदर, परंतु वो है ना, इसलिए वो ईरिया यानी योग के कारण होता है, इसलिए उसको ईरिया पथ कहा। ईरिया पथ कर्म कहा। अब वो किसके होता है बताएंगे। तम छदुमत्थ वीयरायाणम सजोगी केवलिनम वा तम सव्वम ईरिया वह कम्मम नाम। वह छद्मस्थ वीतरागों के, मनीषा बहन छद्मस्थ वीतराग कौन होते हैं? छद्मस्थ रहते हुए पूर्ण वीतराग, 11वां और 12वां, 12वें तक कहेंगे तो सारे पहले से 12वें तक कहना पड़ेगा। वो पूर्ण वीतराग कहाँ है? वीतराग कब हो गए? 12वें में, यानी 10वें के बाद। वो भले 11वें वाला हो, उसके कषाय का उदय नहीं है, उपशमित है, तो उसको भी वीतराग कहेंगे अंतर्मूर्त। और 12वें वाला उसने तो क्षीण मुह है, उसने तो क्षय कर दिया है। दोनों ही कैसे है? वीतराग है, परंतु है छद्मस्थ। और बाकी सर्वज्ञ हो जाए, वीतराग सर्वज्ञ कौन है? और फिर योग रहना चाहिए, हम अयोगी को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ योग है उस जीव को लेना है, और मात्र योग है, कषाय नहीं है, अकेला योग है। तो वह छद्मस्थ वीतरागों के और सयोगी केवलियों के होता है, वह सब ईरिया पथ कर्म है। यानी वहाँ जो सातावेदनीय का जो है, वो ईरिया पथ कर्म है। 48 पृष्ठ पर आते हैं। छदुमत्थ वीयरायाणम ऐसा कहने पर उपशांत कषाय और क्षीण कषाय जीवों का ग्रहण होता है, 11वें 12वें गुणस्थान वाले हैं, क्योंकि अन्य छद्मस्थ जीवों में वीतराकता नहीं पाई जाती। आप कहेंगे क्या कहते हैं, चौथे से वितरागता शुरू होती है ना, अरे यहाँ पूर्ण वितराग की बात है। सजोगी केवलीनम, इस वचन से जो छद्मस्थ निर्देश के साथ वितराग होते हैं उनसे पृथक भूत, क्या कहा, यानी वितरागी उनके साथ विशेषण क्या लगा है, छद्मस्थ, ये 11वें 12वें वाले, और उनसे ये जुदे है, ये बताने के लिए उनसे पृथक भूत केवलियों का ग्रहण किया है, इसलिए उसका नाम है सजोगी केवली, यानी वो केवली है, पूर्ण वितराग है, तो ये केवली तो अयोगी भी है, तो इसलिए सयोगी नाम ले लिया, अयोगी को यहाँ नहीं लिया। अब ईर्ष्यापहत कर्म का लक्षण गाथाओं द्वारा कहते हैं यथा, अभी ऊपर एक एक गाथा पढ़ेंगे उसका अर्थ देखेंगे। अपम बादर महुअम बहुअम लुखम च सुखिलम चेव मंदम महोवयम पिय साधब्बयम च तम कम्मम। ये कर्म ईर्ष्यापहत कर्म कैसा है उसको बता रहे हैं। वह ईर्ष्यापहत कर्म अल्प है, अपम अल्प है, बादर है यानी सूक्ष्म नहीं बादर है, मृदु है मुवम बहुत है, क्योंकि पूरा समय प्रबद्ध उसी में जा रहा है। अल्प है मैंने एक समय वाला है, बादर यानी उसकी जो जाति है, जो पुद्गलों की बादर है कि सूक्ष्म है, वैसा उसका करण कथन है। मृदु है, अल्प है एक समय वाला है, और बहुत है वो क्वांटिटी नंबर ऑफ परमाणु की अपेक्षा। वृक्ष है, वृक्ष है के स्निग्धे उसमें वृक्ष बताया। शुक्ल है, मंद अर्थात मधुर है, महान व्यय वाला है महोव्ययम, महान व्यय यानी जो जितना है वो पूरा का पूरा चला जाता है, अन्यथा क्या होता है जो आता है समय प्रबद्ध उसकी निषेक रचना होती है फिर उसमें से एक एक समय निषेक गलता है, यहाँ क्या है पूरा का पूरा, इसलिए महान व्यय वाला है। और अत्यधिक सात रूप है साधव भयम, अब उसके नेक्स्ट 3 नंबर की गाथा क्या क्या, ईर्ष्यापहत कर्म यानी योग नहीं, ईर्ष्या का अर्थ योग, योग ही एकमात्र योग ही जिसका हेतु है पथ है ने हेतु है, ऐसे कर्म को ईर्ष्यापहत कर्म कहते हैं। योग नहीं, जो कर्म है कौन सा साता वेदनीय जो कर्म आ रहा है योग अल्प है मृदु है वो नहीं ये लेना, योग तो जीव का भाव है, मृदु और ये अल्प है क्या है, एक समय वाला क्या है, साता वेदनीय जो बन रहा है एक समय का, उसमें स्थिति अनुभाग नहीं है, इसलिए कहते वो एक समय वाला इसलिए अल्प है, बादर है मृदु है बहुत है, बहुत है क्वांटिटी बहुत है, पूरा समय प्रबद्ध प्रमाण है। वृक्ष स्निग्ध में से वो वृक्ष है, क्योंकि स्निग्ध क्यों नहीं, स्निग्ध होता तो उसके साथ वो
लंबे टाइम काल तक,
अभी वृक्ष का भी बंध होता है परंतु यहाँ उस वृक्ष है, शुक्ल है मंद है। देखो अब आगे, गहिदम गहिदम चतहा बद्धम बद्धम च पुट्ठ पुट्ठम च उदिदानुदिदम वेदिदम अवेदिदम चेवतम जाने। इसका अर्थ पहले देखते बाद में आप प्रश्न पूछना। हाँ, उसे गृहित होकर भी अगृहित, क्योंकि वो बंद के नहीं के बराबर है ना, आया और चला गया। बद्ध होकर भी अबद्ध, स्पृष्ट होकर भी अस्पृष्ट, उदित होकर भी अनुदित, ये तो उदय रूप ही है परंतु अनुदित उसका क्या फल है, फल जो जो क्योंकि ना उसमें अनुभाग है ना कुछ है, बस धूल आ रही है और जा रही है, सत्ता में जो पूर्व में पड़े हुए जो उसका अनुभाग का उदय है उसको हम उदय कहेंगे वहां पर। वेदित होकर भी अवेदित जानना चाहिए, उदय जो नहीं के बराबर है इसलिए उसका वेदन नहीं ऐसा कहने मां आता है। क्या है प्रश्न आपका, सात को साता, साता को सात रूप कहते हैं, सात असात ऐसे शब्द कहने की पद्धति, साधव बह्यम रूप है, रूप है। दो और तीन हुए, अभी चार नंबर पढ़ेंगे। नीचे हिंदी में फिर दोबारा तीन लिखा है, चार करना गाथा नंबर। पहले ऊपर से पढ़ते हैं। निज्जरिदानिज्जरिदम् उदीरिदम् चेवहोदिनायौवम् अनुदीरिदम् तियपुनो इरियावह लक्षणम् एदम्। ये रियापद का लक्षण कहते हैं। देखो, वह निर्जरित होकर भी निर्जरित नहीं है और उदीरित होकर भी अनुदीरित है। इस प्रकार यह इरियापथ कर्म का लक्षण है। उस समय जो समय प्रबद्ध जो आता है और चला जाता है, उसका ये लक्षण है। क्योंकि योग के कारण उसमें कषाय नहीं है, तो स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ता है, तो जिस समय आया वो उदय रूप होकर ही चला जाता है। इस कहते यहाँ सर्वप्रथम पहली गाथा का अर्थ कहते। देखो, ये हमने अर्थ तो वहां लिखा है, फिर दोबारा उसको खोल रहे हैं। जो कषाय का अभाव होने से स्थिति बंध के अयोग्य है, क्योंकि कषाय से ही स्थिति बंध अनुभाग बंध होता है। तो स्थिति बंध के अयोग्य इसलिए अल्प कहने एक समय वाला कहा। कर्म रूप से परिणत होने के दूसरे समय में ही अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है और स्थिति बंध न होने से मात्र एक समय तक विद्यमान रहता है। ऐसे योग के निमित्त से आए हुए पुद्गल कर्म स्कंध में काल निमित्तक अल्पत्व देखा जाता है। आपका प्रश्न है, अल्प भी कहते बहुत भी कहते, काल निमित्तक अल्प यानी एक समय वाला है, इसीलिए इरियापथ कर्म अल्प है ऐसा कहा है। शंका, जबकि इरियापथ कर्म रूप से एक समय तक अवस्थित रहता है, तब उसके अवस्थान का अभाव क्यों बतलाया? तो एक समय तो रहता है कि नहीं रहता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उत्पन्न होने के पश्चात द्वितीयादि समयों की अवस्थान संज्ञा पाई जाती है। अवस्थित कब कहेंगे? अरे दो समय होगा तब तो एटलीस्ट अवस्थित कहेंगे, एक ही समय को अवस्थित नहीं कहते। उत्पत्ति के समय को ही अवस्थान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से उत्पत्ति के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाए अनुत्पन्न वस्तु का अवस्थान बन जाएगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा देखा नहीं जाता। ये इसमें भी कर्मों में भी जो है ना, भुजगार अल्पतर और अवस्थित कहते हैं। अवस्थित है ना, उतना का उतना रहना, तो उतना का उतना कब कहेंगे? वो तो दूसरे समय में उतना रहा तो हम कहेंगे अवस्थित, नहीं तो या तो बढ़ा हुआ या तो कम हुआ, ऐसा वहां भी कथन आता है, हमने पहले देखा था। वही बात यहाँ कह रहे, अवस्थान कब कहेंगे? कि यदि दूसरे समय रहता तो उसको अवस्थान कह देते। यदि उत्पत्ति और अवस्थान को एक कहा जाए सो भी बात नहीं है, क्योंकि दोनों पूर्वोत्तर काल भावी है। उत्पत्ति का समय पूर्व समय है और उत्तर समय में उसको अवस्थान कहेंगे, इसलिए कहते पूर्वोत्तर। पूर्व और उत्तर, उत्तर एंड नेक्स्ट, पहले और पश्चात, काल भावी है यानी वो तो पहले समय वाला और दूसरे समय वाला, इस करके कहते हो उसको। इसलिए इन्हें एक मानने में विरोध आता है। यही कारण है यहाँ इरियापथ कर्म के अवस्थान का अभाव कहा जाता है। उसमें स्थिति नहीं क्यों कहा? क्योंकि एक समय की तो स्थिति पड़ी ना, अवस्थित रहा ना, तो उसको नहीं कहते स्थिति। ये हो गया एक समय अल्प वाला। आठों कर्मों के समय प्रबद्ध प्रदेशों से इरियापथ कर्म के समय प्रबद्ध प्रदेश संख्यात गुणे होते हैं, क्योंकि क्या कहा? तेजल आपको समझाना है, आठ कर्मों में जो समय प्रबद्ध जाता है उसमें जितना माल आता है एक एक के खाते में, उससे यहां जो इरियापथ कर्म है उसमें संख्यात गुणा द्रव्य आता है। ये कैसे कह सकेंगे आप? बहुत आसान है। हाँ, क्या कहे थे वर्मा? पूरा स्लॉट एक में चला जाता है। पहले आठ में विभाजित होता था, आयु नहीं बनती तो सात में विभाजित होता था, अभी दसवें गुणस्थान में भी छह में विभाजित होता था। छह ने 1/6 मिलता था सातावेदनी को, या प्रत्येक को 1/6 कहो ना, हिना देखो उसको गौण करो, अभी ये पूरा का पूरा लॉट मिलेगा। यानी 1/6 से ये कितना हुआ? छह गुना हुआ ना, 1/7 था उसके सात गुना होगा, जब आठ कर्म बनते उसका आठ गुणा होगा, इस कहते हैं संख्यात गुणा। क्या कहते हैं? आठों कर्मों के समय प्रबद्ध प्रदेशों से, समय प्रबद्ध प्रदेश यानी एक समय प्रबद्ध में जितने परमाणु होते हैं उसकी अपेक्षा से, इरियापत कर्म के समय प्रबद्ध प्रदेश संख्यात गुणे होते हैं। अभी तो यहाँ योग भी हीनाधिक होता है, यहाँ असंख्यात गुणा का भी डिफरेंस पड़ेगा, उसकी बात नहीं है, पर जो जो होगा वो पूरा का पूरा लॉट इसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ सातावेदनी के सिवाय अन्य कर्मों का बंधन नहीं होता। इसलिए इरियापथ रूप से जो कर्म स्कंद आते हैं वे स्थूल है, अतः उन्हें बादर का बादर करने का ये प्रयोजन है, वहां वो हर एक के खाते में कम आता है, इसमें पूरा का पूरा लौट आता है। शंका, इरियापथ कर्म अनुभाग की अपेक्षा बादर होते ऐसा क्यों नहीं ग्रहण किया जाता? संख्या की अपेक्षा बादर क्यों कहा? कहते नहीं, अभी उसमें अनुभाग भी नहीं पड़ता है, जैसे स्थिति नहीं है वैसे अनुभाग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कषाय का अभाव होने से अनुभाग बंधन नहीं पाया जाता। शंकाकार पूछते हैं, कार्मण स्कंधों का कर्म रूप से परिणमन करने के समय में ही सब जीवों से अनंत गुणा अनुभाग होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उनका कर्म रूप से परिणमन करना नहीं बन सकता। यानी सब जीवों से अनंत गुणा का अर्थ क्या होता है? जीव राशि है उससे अनंत गुणा इनका अनुभाग होना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जघन्य अनुभाग स्थान के जघन्य स्पर्धक से अनंत गुणहीन अनुभाग से युक्त कर्म स्कंध बंध को प्राप्त होते हैं ऐसा समझकर अनुभाग बंधन नहीं है ऐसा कहा है। अच्छा,
यहाँ पे हीन क्यों बताया? सातावेदनी में तो बढ़ेगा ना अनुभाग, दसवें के अंत में जो
उसमें अनुभाग ही नहीं है, बढ़ेगा कैसे?
तो जो दसवें के अंत में बनता है,
जिसमें अंत में बढ़ा उसमें तो अनुभाग था, उसके कारण वहाँ जब प्रदेश पड़े थे वो उत्कृष्ट अनुभाग रूप से हो गए, पर ये तो बाद में बंधने वाला है ना, बाद में बंधने वाला उसमें अनुभाग बंधन अनुभाग नहीं है, परंतु नहीं है क्यों कहा? प्रश्न क्या पूछता था? अनुभाग तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसको कर्म कैसे कहेंगे? तो उसके उत्तर में बता रहे हैं कि जघन्य अनुभाग स्थान जो होता है, जघन्य अनुभाग स्थान किसके होता है? अभी जो कुछ है ना, जिसको जो जघन्य में जघन्य जो अनुभाग स्थान है उसका जो जघन्य स्पर्धक है, जघन्य अनुभाग स्थान में भी अनंत स्पर्धक होते हैं, तो वो मिनिमम पॉसिबल जघन्य स्पर्धक पहला स्पर्धक है नीचे का, उससे भी अनंत गुणे ही ऐसा अनुभाग यहाँ पाया जाता है। तो यानी नहीं के बराबर है, इतना ही कहना है इसको, इसलिए इसको अनुभाग बंध नहीं ऐसा कहा। इसलिए एक समय की स्थिति का निवर्तक इरियापत कर्म बंध अनुभाग सहित है ही ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यानी अनुभाग है पर वो नहीं के बराबर कहो, इतना हीन है, और इसी कारण से इरियापत कर्म स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा अल्प है ऐसा यहाँ कहा है। अब आगे, इरियापत कर्म स्कंध कर्कश आदि गुणों से रहित है, वह मृदु स्पर्श गुण से युक्त होकर ही बंध को प्राप्त होते हैं। अभी क्यों होते हैं? तो ऐसा ही वहां का स्वभाव, और केवली ने जाना है तो बताया है, इसलिए इरियापथ कर्म को मृदु कहा है। 50 पेज पर पढ़ रहे अभी हम, कषाय सहित जीव के वेदनीय कर्म के समय प्रबद्ध से यहाँ बंधने वाला समय प्रबद्ध प्रदेशों की अपेक्षा संख्यात गुणा है। ये तो हमने पहले भी देखा था, इसलिए बादर भी कहा था, वहां तो सभी कर्मों की अपेक्षा यहाँ लिया था, यहाँ सातावेदनीय का जो पहले बनता था और यहाँ जो बन रहा है या वेदनीय को इन जनरल, तो कहते कि यह संख्यात गुणा है ऐसा देखकर इरियापत कर्म को बहुत कहा है। शंकाकार पूछते हैं, बादर और बहुत में क्या अंतर है? क्योंकि बादर में भी यही कहा था और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं। समाधान, बादर शब्द कर्म स्कंध की स्थूलता को कहता है, जबकि बहुत शब्द प्रदेशगत संख्या के बहुत्व का प्रतिपादन करता है। इसलिए इन दोनों में केवल शब्द भेद ही नहीं है किंतु अर्थ भेद भी है। स्थूल बहुत संख्या वाला ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि स्थूल एरंड वृक्ष से सूक्ष्म लोहे के गोले में एक रूपता अन्यथा बन नहीं सकती। इस युक्ति के बल से प्रदेश बहुत्व देखा जाता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, स्थूल एरंड वृक्ष, कोई भी वृक्ष लिया वो तो बड़ा है, अभी उसमें कितने परमाणु, स्थूल है और छोटा लोहे का गोला है तो परमाणु किसमें ज्यादा हो गए, वो तो इतना छोटा होने पर भी भारी है ना, और वो कैसा है, बिल्कुल हल्का है, परंतु उसमें कम संख्या में होने पर भी उसमें स्थूलता है, ये कहना चाहते हैं। ऐसे भी हमने शरीर के परमाणुओं की बात देखते, देखो समय प्रबद्ध की औदारिक शरीर स्थूल है, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है, परंतु प्रदेशों की अपेक्षा वो तो आगे की बहुत, जैसे हम कहेंगे संख्या तो अनंत गुणा होते हैं, तेजस और कारमान तो अनंत गुणा आगे के होते हैं। इरियापथ कर्म स्कंद रुक्ष है, क्योंकि पुद्गल प्रदेशों में चिरकाल तक अवस्थान का कारण स्निग्ध गुण का प्रतिपक्ष भूत गुण उसमें स्वीकार किया गया है, इसलिए उसको रुक्ष स्वीकार किया गया है, वो तो टिकता नहीं है। जैसे उसका भीत पर हमने रेती फेंक दी, चिपकती नहीं है, सूखी रेती भीत पर फेंकी तो वो गिर जाती, इस तरह से उसको उदाहरण से समझाया जाता है। शंकाकार पूछते, यहाँ पर रुक्ष गुण यदि इस प्रकार है तो इरियापत कर्म का स्कंद नहीं बन सकता, क्योंकि एकमात्र रुक्ष गुण वाला का परस्पर बंध नहीं होता। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां भी द्व्यधिक गुण वालों का बंध पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, ये जो इरियापथ कर्म स्कंद बताए ना अपन, वो एक समय प्रबद्ध जो है वो स्कंद रूप से आया हुआ है, और आप कहते कि एक गुण वाला वृक्ष होगा तो उसका बंध नहीं बनेगा, पर यहाँ एक गुण वाला होता है ऐसा नहीं कहा उन्होंने, वृक्ष गुण वाला इतना कहा, तो दो का चार के साथ या जो कोई जो दो के डिफरेंस से जो हो उसका बंध होगा, इसलिए कहते वहां भी द्व्यधिक गुण वालों का बंध पाया जाता है। फिर शंका, गाथा में जो च शब्द का निर्देश किया है उसका क्या फल है, देखो वहां ऊपर आए ना लुखम च, मूल गाथा में अपम लिखा, अपम बादर मऊम बहुम लुखम च सुक्किलम चेव, तो च शब्द का अर्थ क्या लेना है, वहां तो केवल स्पर्श गुण की वृक्ष पर्याय बताइए, और शुक्ल ने एकदम वर्ण बताया, रस और गंध की बात की नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि समाधान, इरियापत कर्म के कर्म स्कंद अच्छी गंध वाले और अच्छी कांति वाले होते हैं, यह जताना च शब्द का फल है। इरियापत कर्म स्कंद पांच वर्ण वाले नहीं होते किंतु हंस के समान धवल वर्ण वाले ही होते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए गाथा में शुक्ल पद का निर्देश किया है। बाकी कर्मों के लिए पांचों वर्ण स्वीकार किए गए हैं, परंतु यहाँ इरियापद कर्म में वो नहीं स्वीकार है। यहाँ पर गाथा में आया हुआ चेव शब्द का अन्वय प्रतिपक्ष गुण का निराकरण करने के लिए सर्वत्र करना चाहिए। इरियापद कर्म स्कंद रस की अपेक्षा शक्कर से भी अधिक माधुर्य युक्त होते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए गाथा में मंद, मंद का अर्थ मधुर किया था, मंद पद का निर्देश किया है, और उस हमने वो उसके अर्थ में भी देखा था मधुर किया था अर्थ उसका, मंदम महोवयम था ना, मधुर होता है और महान व्यय वाला होता है। अब 51 पेज पर आना, शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, समाधान, क्योंकि मंद शब्द की मंद्र शब्द के परिणाम रूप से उपलब्धि होती है, मंद्र का अर्थ था मधुर, मंद्र कल कहीं आया था ये मंद्र शब्द और कहीं? ठीक है, जब आएगा तभी देखेंगे। बंध को प्राप्त हुए परमाणु दूसरे समय में ही सामस्त्य भाव से निर्जरा को प्राप्त होते। सामस्त्य ने संपूर्णपणे, समस्त कहते ना, समस्त से सामस्त्य शब्द आया, यानी संपूर्णता, यानी पूरा का पूरा लौट। अन्य कर्म कैसे होते हैं, वो तो आबाधा होती है, फिर पड़े रहते हैं, एक एक निशे गलता है, ऐसी बात नहीं है। तो सामस्त्य भाव से निर्जरा को प्राप्त होते हैं, इसलिए इरियापत कर्म स्कंद महान व्यय वाले कहे गए। यानी जितना पूरा आया वो पूरा का पूरा व्यय हो गया। अथवा वे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के अविनाभावी है, इसलिए उन्हें महान व्यय वाला कहा है। क्योंकि वहाँ असंख्यात गुण श्रेणी जो ऑलरेडी सत्ता में पड़े उसके साथ चल ही रहा है और ये भी जा रहे हैं, इसलिए भी उसको महान व्यय वाला कहा। तेरहवें गुणस्थान की बात चल रही है यहाँ पर इरियापत कर्म तो ग्यारहवें में भी है, बारहवें में भी और तेरहवें में भी है। तो सबकी अपेक्षा समझना, अकेला तेरहवें की बात नहीं है। यहाँ पर आया हुआ अपि शब्द समुच्चय के अर्थ में जानना चाहिए। वह तो महाव्ययम, महोवयम पिय, यानी भी होता है। अब कहते हैं देव और मनुष्यों के सुख से अधिक सुख का उत्पादक है, इसलिए इरियापत कर्म को अत्यधिक सातारूप कहा गया है। शंका, यहाँ सुख का क्या लक्षण है? समाधान, सब प्रकार की बाधाओं का दूर होना, यही प्रकृति में उसका लक्षण है। इससे क्षीण कषाय और जिनों में भूख प्यास आदि सब रोगों का अभाव कहा गया है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, कहा भी है पांच नंबर ऊपर। जंच काम सुहम लोए जंच दिव्यम महासुहम वीयराय सुहस्येदम नंत भागम न अघदे। लोक में जो काम सुख है और जो दिव्य महासुख है, वह वीतराग सुख के अनंतवे भाग के योग्य भी नहीं है। यानी वो जिसको हम कहें ना इंद्रिय सुख और ये जो वीतराग का सुख। अब दूसरी गाथा का अर्थ कहते हैं। ये हमने पहली गाथा की जो शब्द आए थे अलग अलग पेज नंबर 48 के दो नंबर की गाथा, उसका हो गया। अब तीन नंबर की गाथा का अर्थ करेंगे, वो गहिदम अगेध है ना, उसकी बात है। दूसरी गाथा है ना वहां का नंबर तीन, यथा वहां क्या था, गृहित होकर भी अगृहित है, ऐसा वहां कहा था, उसका अर्थ कह रहे हैं। यथा जल के बीच पड़े हुए तप्त लोह पिंड के समान इरियापत कर्म जल को अपने सब जीव प्रदेशों द्वारा ग्रहण करते हुए केवली जिन परमात्मा के समान कैसे हो सकते हैं, ऐसा पूछने पर उसका निर्णय करने के लिए यह कहा है कि इरियापत कर्म गृहित होकर भी वह गृहित नहीं है, क्योंकि वह सरागी के द्वारा ग्रहण किए गए कर्म के समान पुनर्जन्म रूप संसार फल को उत्पन्न करने वाली शक्ति से रहित है। पहले क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने, इतने सब ग्रहण कर रहे हैं, इतने ग्रहण कर रहे हैं तो वो तो केवली कैसे कहेंगे, उसको जिन कैसे कहेंगे, क्योंकि इतने सब कर्म को ग्रहण कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या लिया, जल में पानी में तपाया हुआ जो लोहा अगर हम उसमें डुबो दे तो वो जल को सोख लेता है। आपने कभी देखा है ऐसा तपाया हुआ, ऐसा आवाज करके? हाँ, वो पहले पद्धति थी, पानी पहले तो उबालते थे या नहीं तो क्या करते थे, वो जो तावे तो होता ना उलटना, एकदम लाल करके पानी में डुबो देते तो भी उसमें कैसे आवाज होके उसमें तवे पर भी है, वो तो उसमें तवा तो चली जाता है। तो यहाँ तो जल में डुबाया हुआ ऐसा, जल के बीच पड़े हुए तप्त लोह पिंड के समान। ये जब जल के बीच हुआ वो लोह पिंड के समान, यहाँ क्या लिया? इरियापत कर्म को जल कहा। जैसे लोहा जल को खींच लेता है, सोख लेता है, वैसे इरियापत कर्म रूपी जल को सभी जीव प्रदेशों के द्वारा ग्रहण करने वाले जो केवली है वो परमात्मा के समान कैसे हो सकेंगे? इतना तो कर्म ले रहे। तो कहते हैं ये जो उनका जो गृहित होकर भी अगृहित है, क्योंकि सरागी का जो कर्म है वो फल देने वाला है और इनको इसका कोई फल नहीं है, संसार रूपी फल नहीं होता इससे। अब 52 पेज पर आते हैं। अब उस दूसरा शब्द क्या था, बद्ध होकर भी अबद्ध। अब उसके लिए एक और उदाहरण दे रहे, रेशम के कीड़े के समान इरियापत कर्म से अपने को बांधने वाले जिन भगवान देव नहीं हो सकते, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्या कहा? रेशम का कीड़ा क्या कहते हैं, वो कोष बनाकर अपने को उसमें वो बंद हो जाता है, क्योंकि बद्ध होकर भी वो बद्ध नहीं ही है, क्योंकि दूसरे समय में ही उसकी निर्जरा देखी जाती है, वो रुकता नहीं, वो चला जाता है। और पहले के बांधे हुए कर्मों में भी उनके सहकारी कारण घातिया कर्मों का अभाव हो जाने से अन्य शरीर संस्थान और सहनन आदि को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं पाई जाती। यानी दोबारा और कोई भव धारण करे और वहाँ का शरीर संस्थान वगैरह सब बनाए तो कभी ये उसमें ऐसी शक्ति है ही नहीं है। अघाती केवल बाकी है ना, घाती तो चले गए। अब स्पृष्ट होकर भी अस्पृष्ट कहते हैं। जो कर्मों से स्पृष्ट है वह देव कैसे हो सकता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्पृष्ट होकर भी वह स्पृष्ट नहीं ही है ही लगाया, कारण कि इरियापत बंध का सत्व रूप से जिनेन्द्र भगवान के अवस्थान नहीं पाया जाता, वो टिकता नहीं, वो चला जाता है। और पहले के सत्कर्म के स्पर्श को स्पर्श मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका पतन हो रहा है। पहले ऑलरेडी सत्ता में जो पड़े हैं उसको स्पर्श रूप से ग्रहण स्पृष्ट में कहने तो वो तो जा रहे हैं, उसको भी स्पर्श में नहीं ग्रहण किया है। शंका, यदि जिन भगवान के सत्कर्म का पतन हो रहा है तो उसका युगपत पतन क्यों नहीं होता? क्या कहा? उसकी जो असंख्यात गुणानी गुणश्रेणी रूप निर्जरा चल रही है, एक साथ क्यों नहीं होता? इतना रुकना क्यों पड़ता है? पहले तो घातिया गए ना, तो आघाती को भी नष्ट करते एक अंतर्मुहूर्त में। समाधान, नहीं, क्योंकि पुष्ट नदियों के समान बंधे हुए कर्मस्कंधों के पतन को देखते हुए पतन को प्राप्त होने वाले उनका अक्रम से पतन मानने में विरोध आता है। जो बंधे जो कर्मस्कंध थे वो एक साथ तो नहीं बंधे थे ना, क्रम से बंधे गए तो ये एक साथ पतन भी नहीं होगा, वो क्रम से उसका पतन होगा। जिनेन्द्र देव के पंचेंद्रिय त्रस बादर पर्याप्त गोत्र और आयु कर्म की उदय उदीर्णा पाई जाती है। कौन कौन से लिए यहाँ पर? पंचेंद्रिय त्रस बादर पर्याप्त, ये तो नाम कर्म के लिए, गोत्र लिया, आयु लिया, चार ही तो कर्म है ना। तो आयु की तो उदीर्णा नहीं होगी, पर आयु का उदय होगा, क्योंकि आयु और वेदनी की उदीर्णा छठे में ही बंद हो जाती है। तो इसलिए वे देव कैसे हो सकते हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कर्म उदीर्ण होकर भी उदीर्ण नहीं है। उदीर्ण का अर्थ है उदय रूप, ऊपर क्या उदय उदीर्ण उदिन्न पंचेन्द्रिय तस बादर पज्जत गोदाव कम्मम किधो जिनो। उदय उदीर्णा जो कहा ना, वो वैसी उदीर्णा नहीं लेना, उदीर्ण उदीर्णा अलग बात है और उदीर्ण होना अलग बात है। उदीर्ण होना नहीं, उदय रूप होना, उसी को उदीर्ण कहा था। ऊपर उदीर्ण शब्द है, उदीर्णा शब्द नहीं है। नहीं नहीं, वो समझने के लिए उदय उदीर्णा जो लिखे, नहीं नहीं उदीर्ण होते हैं वो, इसलिए उसको देव कैसे हो सकते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यानी उनके उदय चल रहा है तो उनको देव कैसे कहेंगे, ये प्रश्न है। उसे कहते उनका कर्म उदीर्ण होकर भी उदीर्ण नहीं है, क्योंकि वह दग्ध गेहूं के समान निर्बीज भाव को प्राप्त हो गया। क्या कहते हैं, गेहूं बोने पर वो उसके जो उसका जो पौधा उगता है, तो कहते हैं और दग्ध यानी जले हुए या भुने हुए सेके हुए उसको अगर हम बोते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। उसमें जो उपजने की जो शक्ति थी वो तो नष्ट हो गई है। ऐसे ही निर्बीज यानी वो बीज पना उसमें से निकल गया है। तो ऐसे ही ये जो कर्म है वो कैसे निर्बीज है, निर्बीज है ना, उसके कारण और नया बंध भी नहीं होगा और उसका कोई फल भी नहीं होगा। शंकाकार पूछते हैं, इरियापत कर्म का लक्षण कहते समय शेष कर्मों के व्यापार का कथन क्यों किया जा रहा है? यानी यहाँ क्या पूछा था कि पंचेंद्रिय त्रस बांदर वगैरह वगैरह जो है उदीर्ण होकर भी वो नहीं के समान है, यानी उसे निर्बीज हुए भाव को प्राप्त होते हैं, तो उसके अन्य कर्मों की बात क्यों उठाई आपने इरियापत कर्म के साथ समझ नहीं, क्योंकि इरियापत के साथ रहने वाले शेष कर्मों में भी इरियापतत्व सिद्ध है, यानी अन्य जो कर्मों के लिए भी उदय होते हुए भी उसका अन्य कोई फल नहीं मिलता है, इस अपेक्षा से उसका भी कथन किया है 53 पेज पर। इसलिए उनके लक्षण में भी इरियापत का लक्षण घटित हो जाता है। एक केवल जिनेन्द्र भगवान के लिए ये बात बताई यहाँ पर। अब कहते असाता वेदनीय का वेदन करने वाले जिन देव, वहां है ना वेदते हुए भी नहीं वेदते ऐसा कुछ आया था, उदीरित होकर भी उदीरित नहीं है, और दूसरा क्या बताया था, अनुदीरितम निजरित अनिजित उदीरित अनुदीरित, अवेदित था ना वो, वेदित होकर भी अवेदित। यहाँ पूछ रहे हैं, देखो असाता वेदनीय का वेदन करने वाले जिन देव आमय, आमय का अर्थ होता है रोग, निरामय कहते हैं ना भगवान को, निरामय है, आमय का अर्थ होता है रोग, रोग बीमारी। तो कहते असाता वेदनीय का वेदन करने वाले जिन देव, देखो क्या कहा, ये जिनेन्द्र भगवान को साता या असाता का दोनों का उदय हो सकता है। हाँ तीर्थंकरों के साता का उदय, परंतु असाता का उदय वाले भी पाए जाते हैं। तो जो ऐसे जो है असाता का वेदन करने वाले जिन देव आमय और तृष्णा से रहित कैसे हो सकते हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जिसको रोग होते तृष्णा क्षुधा जो है वो तो असाता के उदय में होता है, और केवली को असाता का उदय पाया जाता है, तो उनके रोग रहित कैसे हो सकते हैं, ये उनका प्रश्न है। क्योंकि असाता वेदनीय वेदित होकर भी वेदित नहीं है, क्योंकि अपने सहकारी कारण रूप घाती कर्मों का अभाव हो जाने से उनमें दुख को उत्पन्न करने की शक्ति मानने में विरोध आता है। देखो साता या असाता का फल कब कहेंगे, वो घाती कर्म के उदय में, मोहनी सॉरी घाती में मोहनी का, तो यहाँ घाती है ही नहीं, सहकारी कारण रूप घाती कर्मों का अभाव ही हो गया है, तो दुख को उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है उसमें। घाती में वो तो एक्चुअली अंतराय को भी ले लेते उसमें कहीं कहीं अनंत सुख में लेते तो है, परंतु दुख को उत्पन्न करने में उसको भी लेते हैं। शंका, निर्बीज हुए प्रत्येक शरीर के समान निर्बीज हुए असाता वेदनीय का उदय क्यों नहीं होता है? अभी उदय होकर भी अनुदय रूप बताया ना उन्होंने, यहाँ क्या कहते हैं, निर्बीज हुए प्रत्येक शरीर के समान, प्रत्येक शरीर का कार्य क्या है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है ना, उसका हाँ फल कैच, तो यहाँ उसका उदय क्यों नहीं होता, नहीं क्योंकि भिन्न जातीय कर्मों की समान शक्ति होने का कोई नियम नहीं है।
भिन्न जातीय कर्मों
वेदनी कर्म जुदा है और वो प्रत्यक्ष शरीर नाम कर्म जुदा है, वो तो दोनों की शक्ति एक जैसी नहीं हो सकती। ये क्या कहना चाहते हैं? ना ना ना, निर्बीज हुए प्रत्येक शरीर के समान, यानी उसका कुछ फल नहीं उमल। प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय में तो एक्चुअली शरीर के परमाणुओं का ही ग्रहण हो रहा है, वो तो केवली के तो हो ही रहा है, परंतु उसको निर्बीज हुए प्रत्येक शरीर क्यों कहा? निर्बीज हुए असातावेदनी का उदय क्यों नहीं होता है, यानी उसका कुछ फल नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? अभी आगे कुछ दूसरी शंका पूछते, वहां से हम जानेंगे। देखो, यदि असाता वेदनी कर्म निष्फल ही है तो वहां उसका उदय है ऐसा क्यों कहा जाता है? यहाँ क्या कहते हैं, असाता वेदनी उसका जो फल जो है दुख उत्पन्न करना, वो उसके सब यानी वो निष्फल है, परंतु प्रत्येक शरीर का कार्य तो वैसे भी चल रहा है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है ना केवली के, तो वो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण हर समय चल रहा है, परंतु यहाँ उसका उदय है तो इसका भी उदय निर्बीज होकर उदय ऐसा क्यों नहीं कह रहे? अभी वो बराबर मेरा प्रश्न का टोन नहीं समझ में आया मुझे। उत्तर तो समझ में आवे ऐसे, क्योंकि वो भिन्न जाति के कर्म है और उसकी शक्ति अलग अलग है। अब कहते यदि असाता वेदनीय कर्म निष्फल ही है, क्योंकि वो तो घाती कर्म है ही नहीं, उसका फल भी नहीं मिलता, ऐसा अगर कहते हैं तो उसका उदय है ऐसा क्यों कहा जाता है? असाता का उदय है ये कहते ही क्यों है, ये उनका प्रश्न है। उसका कार्य तो कुछ नहीं हो रहा है तो उसका उदय क्यों कह रहे हैं, ये उनका कहना है। क्योंकि भूतपूर्व नय की अपेक्षा से वैसा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, सहकारी कारण रूप घाती कर्मों का अभाव होने से ही शेष कर्मों के समान असाता वेदनीय कर्म न केवल निर्बीज भाव को प्राप्त हुआ है, किंतु उदय स्वरूप साता वेदनीय का बंद होने से और उदयागत उत्कृष्ट अनुभाव युक्त साता वेदनीय रूप सहकारी कारण होने से उसका उदय भी प्रतिहत हो जाता है। क्या कहते हैं? यहाँ साता वेदनीय का बंद उदय रूप ही है एक बात, और उदय में आने वाला जो उत्कृष्ट अनुभाव युक्त साता वेदनीय, क्योंकि वो साता वेदनीय के भी वो वहाँ चल रही ना,
सत्ता में पड़ा है,
उसके भी निर्जरा रूप उदय तो चल ही रहा है, तो उदयागत जो है उत्कृष्ट अनुभाव युक्त साता वेदनीय रूप सहकारी कारण होने से उसका उदय भी प्रतिहत हो जाता है। प्रतिहत होते हैं ना, नष्ट हो जाता है। परंतु वो पूर्व में साता रूप था या असाता रूप था, इसलिए उसका नाम असाता का उदय कहेंगे। उसका वो दुख रूप सामग्री या दुख रूप फल देने वाला कोई कार्य वहां नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि बंद के उदय रूप रहते हुए साता वेदनीय कर्म की गोपुच्छा त्यूक संक्रमण के द्वारा असाता वेदनीय को प्राप्त होती होगी, सो यह भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। क्या कहते हैं? बंध के उदय रूप रहते हुए, यानी साता वेदनीय जो है वो उदय रूप है ना, उसका जो इरियापथ है वो उदय रूप है,
बंद होता है वो उदय।
हाँ, तो कहते कि और जो सत्ता में पड़ी है साता वेदनीय, जिसके असाता हमने देखा ना, जिसका उदय है उस रूप त्रिभुक संक्रमण होता है, ऐसे जिसको असाता का उदय है वहां साता है, वो भी असाता रूप से होकर उदय में आनी चाहिए, ये उनका प्रश्न है। तो कहते ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। फिर शंका, यदि यहाँ स्थूप संक्रमण का अभाव मानते हैं, तो साता और असाता की सत्व विच्छित्ति अयोगी के अंतिम समय में होने का प्रसंग आता है। तो अगर ऐसा नहीं मानते है तो अंतिम समय तक दोनों का ही सत्व मानो, एक समय पूर्व अनुदय रूप प्रकृति का क्षय क्यों मानते हो? ये उनका कहना है। जो साता के उदय वाले हैं, उसके असाता का क्षय उपांत समय में होता है, चौदहवें के उपांत समय में, सत्ता अंतिम समय तक नहीं है दोनों की, ये उनका प्रश्न है। थ्यूक संक्रमण नहीं मानते हो तो उसकी सत्व विच्छित्ति अंतिम समय तक रहनी हो, सत्व अंतिम समय तक रहना चाहिए, उनका प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि साता के बंध की विच्छित्ति हो जाने पर अयोगी गुणस्थान में साता के उदय का कोई नियम नहीं है। शंका, इस तरह तो साता वेदनी का उदय काल अंतर्मूर्त विनष्ट होकर कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण प्राप्त होता है। हमारा आपका प्रश्न था कि जो संयोग केवली 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्तों में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, संयोग केवली बन गए, अब उनका जो साता वेदनी का उदय वाला है तो कुछ कम पूर्वकोटि तक उनका उदय होना चाहिए, और हमने ये नियम देखा था कि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उदय पलटता है। नहीं, क्योंकि संयोग केवली गुणस्थान को छोड़कर, ये छोड़कर की बात है, अन्यत्र उदय काल का अंतर्मूर्त प्रमाण नियम ही स्वीकार किया गया है। ओ,
क्या सातावेद संयोग केवली गुणस्थान को छोड़कर,
अयोग नहीं संयोग,
हाँ संयोग केवली में,
यानी संयोग केवली में उसका उदय काल लंबा चलेगा,
हाँ,
ये उसका अर्थ निकल
का लंबा लंबे काल से।
यानी ये जो अंतर्मूर्त का नियम है वो संयोग केवली को लागू नहीं होता, क्योंकि परसों हमने एक वाक्य पढ़ा था जो साता के उदय सहित पहले से है और असाता का उदय सहित है, ऐसे दो बातें हाँ, आई थी बाते। वेदना उसमें आए थे, वेदना में आया था, किस में आया था, लास्ट 12वीं पुस्तक में आया था, 12वीं पुस्तक में आया था। यानी अंतर्मूर्त का नियम अन्यत्र है। हाँ ऐसा ऐसा उसका अर्थ निकलता है।
तो यहाँ पे जो सपक शरीर चढ़ता है उसको साता का उदय से ही चढ़ेगा, तो साता
ही नहीं, ही नहीं साता या असाता,
तो सपक शरीर में भी अंतर्मूर्त में पलटेगा,
वो तो है ही, तो अंतर्मूर्त ही है ना, वहाँ तो पलटने का नहीं, उन्होंने उससे ही चढ़ने वाले की बात वहाँ उठाई थी,
हाँ, तो,
उस पुस्तक में,
हाँ,
तो हमें पता नहीं है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकते, वहाँ तो ऐसा है तो साता के उदय से ही चढ़ने वाला, हाँ ऐसे चढ़ने वाले को ही लिया था उन्होंने, उसका उपांत समय में अंतिम समय में ऐसा जो उसमें भेद डाला था ना उन्हें, उसकी अपेक्षा डाला था। ना देखो कहाँ लिखा है, जरा सुनो, जरा मुझे पढ़ने दो, कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, लास्ट लाइन, साता के बंधे की विच्छित्ति हो जाने पर, साता के उदय का कोई नियम नहीं, किसी के साता का उदय किसी के असाता है, वो तो हमें मालूम है, वो तो मालूम ही है ना, नियम नहीं है साता का ही उदय होता है, हमने तो बताया था कोई असाता के उदय वाला है, कोई साता के उदय वाला है।
मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये सपक श्रेणी में दो अपेक्षा से बात की है, साता के उदय के साथ और असाता के उदय के साथ, तो सपक श्रेणी का जो काल है अंतर्मूर्त उससे जो ये पलटने का काल है वो
ऐसा कहीं भी जब तक उनकी ओर से कथन नहीं है हम अपनी ओर से कोई नियम नहीं बता सकते, यही तो बात बता रहा है यहाँ पर, संयोगी गुणस्थान को छोड़कर अन्यत्र उदय काल का अंतर्मूर्त प्रमाण स्वीकार है, और ये पूरा क्षपक श्रेणी का काल अंतर्मूर्त है, अभी कौन सा छोटा है उसमें उसमें कोई पलटता है नहीं पलटता ऐसा कहीं कथन ही नहीं है, जो कथन आता है उसकी उसी को हम सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। अब उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि जो अंतर्मूर्त का जो उदय काल का नियम है वो संयोग केवली को लागू नहीं होता, और वहां पर 12वीं पुस्तक में यह आया था कि जिस उदय के चढ़ा है,
हाँ।
यानी जिस उदय से चढ़ा है वही उदय शायद चालू रहेगा उनका, ऐसा
हाँ,
लगता है। हाँ 54 पेज पर, अभी जो अब तीसरी गाथा का अर्थ कहते हैं, यानी वहां पर गाथा नंबर 4 थी, यथा निर्जरित होकर भी वह ईर्यापद कर्म निर्जरित नहीं है, ये सारे विशेषण किसके, ईर्यापद कर्म के लिए लागू हो रहे हैं, क्योंकि कषाय के सद्भाव में जैसी कर्मों की निर्जरा होती है, वैसी अन्य अनंत कर्मस्कंधों की बंध के बिना निर्जरा होती है। इसलिए निर्जरित होकर भी निर्जरित नहीं ऐसा कह रहे। शंकाकार पूछते हैं वहां सातावेद्य का बंध है समझ नहीं, क्योंकि स्थितिबंध और अनुभाग बंध के बिना शुष्क भींत पर पेखी गई मुट्ठी भर बालुका के समान, यह है ना, ये शास्त्र का ही उदाहरण, जीव से संबंध होने के दूसरे समय में ही पतित हुए सातावेद्य कर्म को बंध संज्ञा देने में विरोध आता है, उसको बंध नहीं भी कहते उसको। अब उदीरित होकर भी वह उदीरित नहीं है, क्योंकि बंध का अभाव होने से और जन्मांतर को उत्पन्न करने की शक्ति का अभाव होने से, यानी अभी संसार में घूमने रूप कुछ कार्य नहीं हो रहा है, उसमें निर्जरा का कोई फल नहीं देखा जाता। इस प्रकार ईर्ष्यापथ का लक्षण तीन गाथाओं द्वारा कहा, ये ईर्ष्यापथ कर्म जो है उसकी बात यहाँ उन्होंने बता दी। अब वो कितने नंबर का हुआ था,
अभी नौ,
सात हुआ था ना, अभी आठ नंबर, हाँ तप कर्म का नंबर आठ, निक्षेप नंबर आठ। अभी पढ़ेंगे इसको, जम तम तवो कम्मम नाम। अब तपह कर्म का अधिकार है, उसके अर्थ का खुलासा करते हैं। तम सभ्यंतर बाहिरम बारसविहम तम सवम तवो कम्मम नाम। वह अभ्यंतर और बाह्य के भेद से बारह प्रकार का है, वह सब तपह कर्म है। वह तपह कर्म बाह्य और आभ्यंतर के भेद से बारह प्रकार का है। शंका, तप किसे कहते हैं? समाधान, तीन रत्नों को प्रकट करने के लिए, तीन रत्न समय दर्शन ज्ञान चारित्र इच्छा निरोध को तप कहते हैं। उसमें ऊपर लिखा है ना, देखो मूल प्रकृति में तिन्नम रेणानम आविभावट्ठम इच्छा निरोहो, नीचे उसको उस स्टार वो चिन्ह देखो, रत्नत्रय आविर्भावार्थम इच्छा निरोधस्तपः, अथवा कर्मक्षयार्थम मार्गाविरोधेन यानी मार्ग अविरोधेन तप्यते इति तपः। चारित्रसार ये पूछते हैं ना कहाँ आया है, ये चारित्रसार में आया है, इच्छा निरोधस्तप ये कहाँ है, क्योंकि तत्वार सूत्र में तपसा नहीं जरा इतना ही आया है, ये पहले लिख के रखा है हमने चारित्र सार। अभी आगे बढ़ते, अभी चारित्र सार उसमें इसमें निकालना पड़ेगा, इस कोश है ना सिद्धांत कोश में, अरविंद भाई नहीं है वो फट निकाल के दे देते वैसे कचट तपने दूसरी तीसरी पुस्तक में होना चाहिए, उसके अनुक्रमणिका के अनुसार होता है ना चारित्र सार ग्रंथ, देखना है तो निकालो, वो सिद्धांत कोश है वहां पर देखो राइट साइड में बीच वाले कंपार्टमेंट में, हाँ वो सेकंड नंबर का क्या है, सेकंड नंबर, वो लास्ट में क से लेकर कहाँ तक है पता नहीं है, जरा ले लेना उधर ही बैठो, कसट तप हाँ है, चारित्र है मिला, चारित्र सार चाहिए ना, चारित्र चारित्र सार चामुंड राय द्वारा रचित संस्कृत गद्य बद्ध ग्रंथ, इसमें मुनियों के आचार का संक्षिप्त वर्णन है, कुल 6000 श्लोक प्रमाण है, ईस्वी सन शो लिखा है शके 10 और 11 शके 10 11 ई शो लिखा है ई शो हाँ हाँ बराबर बराबर सामुंडराय द्वारा रचित है चारित्र सार हाँ मुझे ही पता नहीं था चारित्र सार चामुंडराय द्वारा रचित उन्होंने केवल करनानी ऊपर भी नहीं ये चरणानी ऊपर भी ये लगना थे ये जीवकांड की तो वो बातें लिखी थी उन्होंने
नहीं ना तो उनके
हाँ
तो उन्होंने लिखा है
हाँ होगी
मुनि ने नहीं लिखा है उन्होंने चामुंडराय खाली में
क्या बाद में हुए होंगे
हाँ इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि उन्होंने उनका रेफरेंस आया है
हमें तो वो जब वो राजा थे राजा ने सेनापति थे मूर्ति उत्पन्न की वो तो देखा परंतु उन्होंने बाद में तो ये तो कर्णानी योग के इतने ग्रंथ उसकी टीका भी संस्कृत टीका मूल में उन्होंने लिखी थी और फिर उसके बाद वो जो जीवकांड कर्मकांड वगैरह सब जो उन्होंने पहली टीका लिखी जीवकांड की पहली टीका उन्होंने लिखी बाद में केशव वर्णी जी ने संस्कृत टीका वो कन्नड़ लिपि में लिखी और बाद में उस समय ज्ञान चंद्रिका अपने टोडरमल जी साहब ने लिखी तो चारित्र सार ग्रंथ उन्होंने लिखा है मुनियों के संबंध उसके संबंधी मुनि हुए हो गए वो हाँ अभी आगे देखते तो इच्छा यहाँ इच्छा निरोध हुआ है इच्छा निरोध करो हमें मालूम है इसलिए हम पढ़ लेते हैं ऐसा ही तीन रत्नों को प्रकट करने के लिए इच्छा निरोध को तप कहते हैं उसमें चौथे छठे आठवें दसवें और बारहवें ऐषण का ग्रहण करना तथा परिच्छाओ चाहिए बरोबर ऐषण परिच्छाओ ऐषण का त्याग ग्रहण करना चाहिए परिच्छाओ तथा एक मिनट एक पक्ष एक मास एक ऋतु एक तो एक वर्ष तक ऐषण का त्याग करना देखो देखो तथा चौथ छठम दसम द्वालस नीचे स्टार है द्वादश द्वादश पक्ष मास उड़ेयन यानी बीच में उन्होंने ये ग्रहण करना शब्द वहां लिखा है क्या नहीं 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 बारहवें के बाद क्या है बारहवें ऐशन का
ग्रहण करना लिखा हमारे
नहीं नहीं त्याग करना तथा एक पक्ष वगैरह ये ग्रहण करना नहीं त्याग करना ही चाहिए क्योंकि ऊपर दोनों का मिलकर एक एक वाक्य देखो ऊपर क्या लिखते हैं मैं प्राकृत पढ़ती हूँ चौथ छठ छठ अठम दसम द्वालस फिर पक्ष मास उड़ुयन उड़ुयन अयन संवत्सरेषु ऐसन परिच्छाओ अनेशनम नाम तवो अनेशन कहते अनेशन है उपवास यानी ऐशन का त्याग यानी उसमें चौथे ऐशन का त्याग छठवें आठवें दसवें बारहवें तथा एक पक्ष एक मास एक ऋतु एक अयन एक वर्ष तक ऐशन का त्याग करना अनेशन नाम का तप है तो ऐशन हाँ
त्याग करना ही
तो ये ग्रहण करना नहीं त्याग करना चाहिए बारहवें ऐशन का त्याग करना ऐशन ने भोजन खाद्य हाँ देखो ये नीचे लिखते हैं ऐशन किसे कहते हैं तो अशन पान खाद्य और स्वाद्य यानी उसमें केवल भोजन ही नहीं, वो तो पानी की भी ली है, यानी थोड़ा कुछ खा लिया, ये चार प्रकार के आहार का त्याग है जिसको कहते हैं। ये आहार को कहेंगे एषण। कौन कौन से उसमें? अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, इनका नाम एषण है। तो यह किस लिए किया जाता है? ये उपवास वगैरह जो त्याग किया जाता है, क्यों किया जाता है? यह प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की सिद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि भोजन के साथ दोनों प्रकार के असंयम का अविनाभाव देखा जाता है। यानी उसमें तो प्राणी की हिंसा होती है, असंयम तो होता ही होता है, और इंद्रियों का भी असंयम होता ही होता है भोजन में। इसलिए दोनों का त्याग करने के लिए ये भोजन का एषण का ही त्याग करने कर देते हैं। हाँ, क्या लिखा? पान का अर्थ क्या है? पान का अर्थ क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, अशन का अर्थ क्या है जो हम भोजन के
खाते हैं?
पान यानी पानी। खाद्य का अर्थ तो हम पेय, शरबत है, दूध है, वो सब पान में आता है, पेय सब पेय। खाद्य में अभी हमने भोजन नहीं किया, थोड़ा कुछ खा लिया, लड्डू बिड्डू खाया, हाँ यानी कुछ भी ऐसा। हाँ, और स्वाद्य ये जो वरियाली है, जो कुछ है, हाँ, पान खाया, तंबूल खाया, वरियाली खाई, उसका नाम एषण है। उसको एषण कहेंगे। जिसने जितना त्याग किया है उसकी बात है। अब यहाँ उपवास की बात चल रही है, रात्रि भोजन की नहीं चल रही। हम क्या कहते हैं, कितना लेते नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। अब पानी का भी त्याग करने वाले हैं, शाम के बाद पानी भी नहीं लेते हैं, फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद लेते हैं। हमसे नहीं होता है, पर क्या विधि क्या है वो हमको मालूम होनी चाहिए। आप दूध लेते हैं, फल लेते हैं, क्या कुछ खाते हैं, वो बात नहीं है। आप क्या करते हैं उसकी चर्चा नहीं है। हाँ, वो किसको क्या कहना उसकी बात है। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, दोनों प्रकार के असंयम का बिना भाव देखा जाता है, पर इसका अर्थ यह अर्थ नहीं कि चारों प्रकार के आहार का त्याग ही अनेशन कहलाता है। क्या कहा? हमने केवल वो आहार का त्याग कर दिया, कुछ नहीं लिया, पानी नहीं लिया, क्या करे दिन भर? वो इनके बाजू में वो एक वो सोने चांदी वाला कुछ दुकान था, उपवास करना, क्या करना अभी अभी कुछ नहीं, नहीं वो ताश खेलना,
टीवी देखना टीवी है।
हाँ। तो कहते क्योंकि रागादिकों के त्याग के साथ ही उन चारों के त्याग को अनेशन रूप से स्वीकार किया। हमने तो उपवास किया, बाकी तो क्रोध तो बहुत बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पेट में अन्न नहीं है।
हाँ? नहीं, मंदिर में रहने से भी गुस्सा था।
देखो देखो, अरे पर मंदिर में भी गुस्सा कहीं पर भी होता है। क्या हो? देखो किसका त्याग करने की बात करें,
नहीं नहीं
वो मजाक इसलिए क्योंकि बाहर देखते हैं ना लोग क्या करते हैं, उसकी बात वो देखते हैं। आपने किया कि नहीं किया?
मैंने उपवास बहुत पहले किया था, पर समझे बिना,
तब अमर छोटा था तभी
ना।
तब गुस्सा से मारा था। यही कह रहे ना। देखो क्या कहा, रागादिकों के त्याग के साथ ही लगाया। राग में सब लेना, क्रोध मान माया लोभ सब। हम किसी को गुस्सा नहीं करते, जाके दुकान में बैठते हैं तो लोग हुआ कि नहीं हुआ। उन चारों के त्याग को अनेशन रूप से स्वीकार किया। इस विषय में एक श्लोक है, देखो ऊपर देखते, 6 नंबर का है ना। अप्रवृत्तस्य दोषेभ्य सहवासो गुणैस्सह उपवासस्य विज्ञेयो न शरीर विशोषणम्। शरीर को शोषण करने को नहीं कहते, केवल क्या कहा नीचे देखो, उपवास में प्रवृत्ति नहीं करने वाले जीव को अनेक दोष प्राप्त होते हैं और उपवास करने वाले को अनेक गुण, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। शरीर के शोषण करने को उपवास नहीं कहते। नहीं, एक्चुअली ऐसा है, ये उसका अर्थ बराबर नहीं किया उन्होंने। अप्रवृत्तस्य दोषेभ्य सहवासो गुण ही से, यानी गुणों के साथ रहते हैं और दोषों में अप्रवृत्ति करते हैं, उसको यहाँ उपवास कहा है। ऐसा उसका देखो, अप्रवृत्तस्य दोषेभ्य, दोषेभ्य अप्रवृत्तस्य गुण ही सह सहवास उपवासस्य विज्ञेयो, उसको उपवास कहते हैं। न शरीर विशोषण, शरीर का शोषण करना यानी शरीर को कृश करना, इसको उपवास नहीं किया कहा। तो दोषों का त्याग यानी दोषों में अप्रवृत्ति और गुणों में सहवास, ऐसा उसका अर्थ होना चाहिए। उपवास में प्रवृत्ति नहीं करने वाले जो को अनेक दोष प्राप्त होते हैं और उपवास करने वाले को अनेक गुण, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। शरीर के शोषण करने को उपवास नहीं कहते।
दोषों में प्रवृत्ति और गुणों में वास,
देखो उपवास से विज्ञेय, यानी उपवास किसको कहना कि दोषेभ्य अप्रवृत्तस्य और गुण ही सह सहवास, ऐसा लगता है। यानी उपवास क्या होगा कि दोषों में अप्रवृत्ति है, गुणों में सहवास है, यह उन्होंने ऐसा ही कहा है कि जो उपवास में प्रवृत्ति नहीं करते उनको अनेक दोष प्राप्त होते हैं, उपवास करने वाले को गुण। शरीर के शोषण करने को उपवास नहीं कहते। अभी उसका विशेषार्थ खोलेंगे, शायद वो बताएंगे, इतना पढ़ लेते। देखो 12 प्रकार के तपों में पहला अनशन तप है, यह इसका नाम अनेशन दिया है। एशन का अर्थ खोज करना है। साधु बुभुक्षा की बाधा होने पर, बुभुक्षा ने क्षुधा, भूख जिसको कहेंगे, 4 प्रकार के निर्दोष आहार की यथाविधि खोज करता है, इसलिए इसका एशन यह नाम सार्थक है। एशना समिति से भी यही अभिप्राय लिया है। अनशन यह नाम अशन नहीं करना, इस अर्थ में चरितार्थ है, यानी यूज होता है। इससे अनेशन इस नाम में मौलिक विशेषता है। एशन की इच्छा न होने पर साधु अनशन की प्रतिज्ञा करता है, इसलिए अनेशन साधन है और अनशन उसका फल है। यानी उनकी इच्छा ही नहीं है। हाँ, भोजन रूप क्रिया की व्यावृत्ति अनशन है, उस क्रिया से हट गया ना, और भोजन की इच्छा न होना अनेशन है। क्या कहा, बहुत अच्छा बताए। क्या कहा, ये क्रिया से हटना वो अनशन और भोजन की इच्छा न होना अनेशन, और ऊपर अनेशन को लिया है, अनेशन को तप लिया, इच्छा का उत्पन्न ही नहीं होना, वो कब पॉसिबल है, स्वरूप में स्थिरता के द्वारा उसकी इच्छा ही नहीं हो रही। यहाँ अन्न का अर्थ ईषद भी है, इससे यह अर्थ भी फलित होता है। जो 4 प्रकार के आहार में से 1, 2 या 3 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उनके भी अनेशन तप माना जाता है। अवमोदरी की बात हम कल देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी एक चावल, उसका एक ग्रास कितना होता है, उसकी चर्चा कल करेंगे। हमने अभी अनेशन देखा, फिर अवमोदरी की बात पढ़ेंगे कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं भाई।